अमर, तुम्हारा बाप और माँ इस्लाम के पहले शहीद हैं, उनके लिए जन्नत का वादा है।
हम लोगों में बर्दाश्त का और कितना हौसला है।
हुजूर ने फरमाया मक्का छोड़ दें,
अगर न गए तो वो सबको मार देंगे एक एक करके।
हुजूर कहते हैं कि हफशा का बादशाह एक ईसाई है और उसके मुल्क में सब बराबर हैं।
तो फिर फौरन निकलो, आज ही।
घुड़सवार,
हमें उनके निशानात भी मिले, उनका पीछा भी किया, मगर वो गायब हो गए।
वहीं तो थे, तपता सहरा, मंडलाते गिद्ध, और तूने उन्हें जाने दिया?
जाने दिया? वो गायब हो गए।
मोहम्मद यही है, सिर्फ कमजोर भागे हैं।
कमजोर होंगे ताकतवर बदनाम तो करेंगे। हम ईमानदार ताजिर इतबार पर कारोबार करते हैं, बदनामी मोल नहीं ले सकते। हफशा, आमरो, तुम शाह हफशा नजाशी के दोस्त हो?
हाँ।
क्या ये दोस्ती काम आ सकती है?
मेरा ख्याल है मैं उन्हें ले आऊंगा,
हबशा।
सीधे हो जाओ उमरू। तुम जानते हो कि ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हें मैं ना दूं।
ए यहूदिया के शेर, समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं।
जहां से हमारी दोस्ती शुरू होती है।
हमारे कुछ बागी गुलाम फरार होकर आपकी सल्तनत में आ गए।
गुलाम वापस जाएंगे। अगर हमारे गुलाम होते तो तुम भी उन्हें लौटा देते।
गुलामों के अलावा कुछ और लोग भी हैं बागी।
बागी, अगर अरब में कोई गड़बड़ाए तो मुझे तला क्यों नहीं।
वो मजहब के बागी हैं।
अगर देखा जाए तो तमाम मजाहब इब्तदा में बगावत ही होते हैं। दुनिया भर के गुलामों का जिस्म तो हमारे इख्तियार में हो सकता है, लेकिन यसु मसीह जो हमारे गडरिया हैं, वो जिस्मों की नहीं रूहों की गल्लाबानी करते हैं।
मगर ये वो अरब हैं जिन्होंने अपने अभाई दिन को छुटाकर एक दीवाने की अतात कबूल कर ली, जिसे वो नबी कहते हैं।
मैं रूहों को जंजीरें नहीं पहना सकता जब तक सुन न लूं।
बहुत खूब, इनकी तनी गर्दने ने ले मरेंगी।
क्या तुम अपने नबी के सामने नहीं झुकते?
मोहम्मद एक इंसान है, हम सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं।
मोहम्मद के मौजे कहां हैं जाफर? अगर वो नबी होता तो आसमान उसके मौजों से रोशन हो जाता।
यकीनन ये सच है, खुदा अपने नबियों को मौजज़े अता करता है ताकि हम उन्हें पहचान सकें।
मोहम्मद का मौजज़ा कुरान है।
किताब, एक किताब जो एक उम्मी ने लिखी और खुदा से मंसूब कर दी। यहां पर आप बात सुन चुके।
याद आ गई दे पंतिकोस्त, जब खुदावन का फैलता हुआ नूर मसीह की हवारियों पर उतरा और वो गैर जबाने बोलने लगे जिन्हें वो जानते तक नहीं थे। हाँ, लेकिन क्या आजकल भी ऐसे मौजज़े होते हैं? मैंने बहुत सुन लिया, तुम्हारी दलीलों में जान नहीं।
जब मक्का में हम पर जुल्म हुआ तो रसूल अल्लाह ने कहा हबशा चले जाओ, एक सच्चे बादशाह का मुल्क है जहां किसी के साथ ज्यादती नहीं होती।
जिसे ये जुल्म कहते हैं वो इंसाफ पर मबनी सजा थी। इनकी बगावत
तारे पैगंबर ने मेरे पास क्यों भेजा?
क्योंकि आप भी हमारी तरह अहले किताब हैं। उनको यकीन था कि खुदा आपके दिल में हमारी हिफाजत का ख्याल डाल देगा।
इनसे बात करना शराब को पानी समझने के बराबर।
लेकिन अब मुझे इनकी बात जरूर सुननी पड़ेगी मेरे दोस्त। बोलो।
बरसों तक हम अपने हाथों के तराशे हुए लकड़ी और पत्थर के खुदा पूछते रहे। हम अल्लाह से गाफिल थे, हमारे पास अपने बनाए हुए कवानीन थे अल्लाह के नहीं। अमीर गरीब से लापरवाह था, वो फितरी जज्बा जो अपने गिरे हुए भाई को हाथ बढ़ाकर उठा ले। अपने माशरती निजाम में ये उसी इंतशार का बायस समझते हैं।
इंसानियत की इस तजलील के खिलाफ एक इंसान है जो अल्लाह ने चुना और जिस पर हमारा ईमान है।
तुम जज्बाती हो गए हो, अपने आप को संभालो।
मैं वो कहता हूं जो रसूल अल्लाह कहते। मोहम्मद हमें सिखाते हैं कि एक खुदा की इबादत करो, सच बोलो, अपने पड़ोस का उतना ही ख्याल रखो जितना कि अपना, खैरात दो चाहे वो एक मुस्कुराहट ही क्यों ना हो, औरत की बेहरमती मत करो, यतीमों के वाली बनो,
लकड़ी और पत्थर के उन खुदाओं से मुंह मोड़ लो।
ये काफिराना बातें सुनकर मैं चुप खड़ा नहीं रह सकता। हम एक कदीम तहजीब है, हमारे खुदाओं को लकड़ी और पत्थर कहना सरासर जहालत है। हम बुद्ध या शबी को नहीं पूछते, बल्कि उस रूह को पूछते हैं जो उनमें रहती है।
मैं मानता हूं कि बुद्ध परस्ती को कभी ठीक से समझा ही नहीं गया।
शुक्रिया। अब मैं इसे औरत के मौजू पे वापस लाता हूं।
अल्लाह ने औरत मर्द को एक दूसरे का साथी बनाया है। वो मुख्तलिफ हैं मगर बराबर हैं।
बराबर? हम उसे खरीदते, खिलाते, पहनाते, इस्तेमाल करते, झटकार देते हैं। औरतें और हमारे बराबर?
अल्लाह ने कुल इंसानियत को एक औरत और एक मर्द से खल्क किया। अमरो, तुम्हें औरत की उस कोख का एहतराम करना चाहिए जिसने तुम्हें जन्म दिया।
तुम्हारे 300 खुदाओं की ज़बानें गुंग हैं और इनका एक खुदा बोलता है।
अल्लाह इससे पहले भी हमसे कलाम कर चुका, इब्राहिम, नूह, मूसा और यसू मसीह के जरिए। अगर अब अल्लाह ने हमसे मोहम्मद के जरिए कलाम किया है तो इसमें इतनी हैरत क्यों?
तुम्हें यह नाम किसने सिखाए?
ये नाम कुरान में।
मैं तब से मोहम्मद को जानता हूं जब वो एक यतीम गडरिया था।
और हम यसू मसीह को तरखान के तौर पर जानते हैं जो यसू मसीह कहते हैं, और जो तुम्हारे मोहम्मद कहते हैं वो एक चिराग से फैलती हुई दो शुआएं हैं।
ये झूठ बोल रहे हैं, ये ईसा को नहीं मानते। ये कहते हैं तुम्हारे 3 खुदा हैं, बाप, बेटा और रूल कुद्स।
क्या कहते हो तुम मसीह के बारे में?
कहते हैं खुदा का कोई बेटा नहीं हो सकता, मसीह खुदा का बेटा नहीं है।
मसीह के बारे में कुछ कहो।
हम वही कहते हैं जो हमारे नबी ने हमें बताया है। अल्लाह ने अपनी मुकद्दस रूह कुंवारी मरियम की रहम में फूंकी, इस तरह मसीह की विलादत हुई जो अल्लाह के रसूल हैं।
ये कहता है रसूल, बेटा नहीं, बेटा नहीं।
तुम्हारा मुजजा कुरान हमारे आका के बारे में क्या कहता है?
क्या मैं कुरान सुनाऊं?
और करीब आओ।
शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। और किताब में मरियम को याद करो, जब वो अपने घर वालों से मशरिक की तरफ एक अलग जगह गई तो हमने उसकी तरफ जिब्रील को भेजा तो बोला, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं और तुझे एक पाक बेटे की बशारत देता हूं। बोली, मेरा बेटा कहां से होगा, मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं। जिब्राइल बोले, तेरे रब ने फरमाया ये होगा, और इसलिए कि हम इसे लोगों के वास्ते निशानी कर और अपनी तरफ से एक रहमत, और ये काम ठहर चुका।
तुम्हारे और हमारे दरमियान फर्क इस लकीर से बड़ा नहीं।
सोने के पहाड़ के बदले भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा इन्हें।
तुम जब तक चाहो अमन के साथ रह सकते हो यहां, खुदा तुझे अपनी रहमत के साए में वापस लेकर जाए।
बहुत हो गया, मोहम्मद ने हमारे सिफारती ताल्लुकात भी खराब कर दिए। ठीक है, हम उसे दरबदर कर देंगे। अबू तालिब ने उसे पनाह दे रखी है। ठीक है, हम चचा और भतीजे दोनों को निकाल देंगे।
निकाल दो
एक साथ, सारे खानदान को बाहर निकाल देंगे। हम इन्हें खुद से अलग कर देंगे।
उन ताजिर उनसे कारोबार न करे, उनकी जमीनें छीन ली जाए, उनकी सर पर छत न रहे, कोई उन्हें रोटी न दे, कोई औरत उनसे शादी न करे। जब तक वो एक खुदा को छोड़ न दे।
निकाल दो इन्हें।
یہ حیات رسول اللہ کے بدترین سال تھے۔ وہ پورے 3 سال بھوک پیاس اور کھلے صحرا کی بے رحمی کا سامنا کرتے رہے۔ دکھ اور بھی بڑھ گیا جب 24 سالہ پرخلوص رفاقت کے بعد آپ کی پیاری بی بی خدیجہ چل بسی، اور ان کے بعد جناب ابو طالب کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ابو طالب نے مرتے وقت مکہ والوں اور رسول اللہ کے درمیان پھر مصالحت کی کوشش کی۔
اس نے تم سے بس یہی تو مانگا، ایک لفظ، ایک خدا۔
اگر یہ ایک لفظ کی بات ہوتی تو ہم اسے 10 بار مان چکے ہوتے، مگر وہ تو ہم سے ہمارے خدا مانگ رہا ہے۔
تم ڈرتے ہو، اس کی بات سننے سے بھی۔
چچا کی موت کے بعد مکہ میں جناب رسول اللہ کو کوئی مددگار نہ رہا۔ تب وہ اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ ایک روز تبلیغ اسلام کے لیے طائف گئے، جہاں شرارتی بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا۔
یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ رک جاؤ، مت مارو، رک جاؤ، دور ہٹ جاؤ، مت مارو۔
جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی زندگی کا تلخ ترین دن تھا، جب بظاہر رسول اللہ اپنے مقصد میں ناکام ہو چکے تھے۔ صورتحال موجانہ طور پر تبدیل ہو گئی۔ ایک امیر لیکن اپنی تباہی پر تلا ہوا شہر یثرب، یہاں سے ایک وفد نے رات کی تاریکی میں آپ سے عقبہ کی پہاڑیوں میں ملاقات کی اور یثرب آنے کی دعوت دی، تاکہ آپ خانہ جنگیوں اور آپس کے اختلافات ختم کرنے میں ان کی مدد کریں۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا اگر وہ ایک خدا کی عبادت کریں تو وہ ان کا ساتھ دیں گے۔
ٹھہرو، جب ہم یہ عہد کریں گے تو سارے عرب سے کٹ جائیں گے، اس لیے رکو۔ جنگ ہے اس معاہدے میں، ہمیں اپنے بھائیوں کو اپنا دشمن بنانا پڑے گا، اپنے خداؤں کو آگ میں جھونکنا پڑے گا، یہی ہے اس عہد کا مطلب۔ اور ایک بار یہ عہد کر لیا تو توڑا نہیں جا سکتا۔ محمد یقیناً اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم اپنے شہر کے یہودیوں سے یہ پیش گوئی سن چکے ہیں۔
اگر کسی کو شک ہے تو وہ ابھی چلا جائے۔
لیکن اگر کسی کو کوئی شک نہیں تو یہ اقرار کرے جو میں کر رہا ہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں اللہ ایک ہے اور تم محمد اللہ کے رسول ہو۔
یہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے، انہیں اپنے ساتھیوں کو، ہمارے بھائیوں کو ہماری طرف مدینہ آنے دو۔
70 लोग छोटी छोटी टुकड़ियों में बटे, जिन्होंने तपते सहरा का 250 मील लंबा सफर पैदल तय किया। ये वो सफर है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। कितने दूर रस्ते ये नतायज, कितने गहरे नकूश हैं इस सफर के। इस सफर से मुसलमानों का सने हिजरी शुरू होता है। ये वो लम्हे थे जिनमें मुसलमानों को अपने मुस्तकबिल के निशान मिले। हाँ हजरत, मक्का ही में रहे, जानलेवा खतरों में घिरे हुए, मगर वो वहीं रहे जब तक मुसलमान बहिफाजत यसरब न पहुंच गए।
मोहम्मद तो एक कौम बन गया, एक शहर का मालिक बन गया, अहद भी ले रहा है, मुआहदे भी कर रहा है, और तुम सलूल जिसे मदीने की बादशाहत का दावा है सोते रह गए, और वो रातों रात तुमसे शहर ले गया।
अपनी फिक्र करो अबू सुफियान, शाम तक इधर तो क्या महक के एक लपक ले जाने के लिए भी मदीने में तुम्हें उस शख्स के सामने रेंगते हुए गुजरना पड़ेगा। तिजारती शहरख पर बैठ गया है वो तुम्हारी।
तुम्हारा क्या इरादा है?
मैं इंतजार करूंगा।
और कब तक इंतजार करोगे?
जब तक तुम सारा अरब अपना तर्ज जिंदगी बचाने के लिए उसे रास्ते से हटा नहीं देते।
तब तक तुम क्या करोगे?
जाहिर है उसकी आवाज पर लबैक, लेकिन अगर वो ये समझता है कि मैं उसका बन जाऊंगा तो हर किस नहीं। मदीने के लिए ईमान लाना बुरा सौदा नहीं।
मुनाफकत?
मुनाफकत नहीं, अकलबंदी।
शासलून जमीन पे माथा रगड़ेगा दिन में 5 बार, यकीन नहीं आता।
तुम फिक्र ना करो, जो पहले नहीं किया आप करेंगे। कत्ल मोहम्मद।
आओ आओ और देखो, कहते हैं कि मश्क कामिल कर देती है। सात नौजवान मुख्तलिफ खानदानों से, मेरा बेटा अकरमा भी, मिलकर नेजे घूपेंगे
एक साथ।
जब हम इस कत्ल की जिम्मेदारी बांट लेंगे तो फिर एहसास जुर्म कैसा? मेरा मंसूबा।
मैं शायद इसका हिस्सा न बन सकूं। मोहम्मद कोई आम इंसान नहीं, उसकी सोच, उसके लफ्ज।
लेकिन मसले का ये हल कमाल है।
और हतमी भी।
अली, उसका भाई वहां लेटा था उस पर कुर्बान होने के लिए। यह हम किन लोगों से लड़ रहे हैं?
वदूर नहीं गया होगा क्योंकि हर रास्ते पर पहरा है, सहरा की तरफ निकला होगा। मक्का उस शख्स को 100 ऊंट देगा जो मोहम्मद को लाएगा, या उसके सर को। वो 3 है, मोहम्मद, अबू बकर और उरीकत उन्हें ले जाने वाला बद्दू।
क्या है ये?
ये चरने वाले ऊंट नहीं, खजूरें खाते हैं। ये शहर के ऊंट हैं।
नहीं, यहां क्या कर रहे हो? मदीना तो शुमाल में है।
निशान ऊंटों ने बनाए हैं, मैंने नहीं।
बद्दू और मगरिब की तरफ?
मैं अपने फन में माहिर हूं।
सुना है कि तुम हवा सुनकर परिंदे का रास्ता बता देते हो। इनके साथ ही चलो।
वो वहां उस गार में हो सकते हैं।
मोहम्मद, अगर तुम बाहर निकल आओ हम तुम्हें जिंदा मक्का ले जाएंगे। मोहम्मद, बाहर आ जाओ। वो यहां नहीं हो सकता, जाला कहीं से टूटा हुआ नहीं है।
कबूतरों ने तो घोंसला भी बना रखा है।
हमने पीछा करने में गलती की, हमें शुमाल की तरफ जाना चाहिए था।
तो फिर चलें, अभी वक्त है कि हम उन्हें पकड़ सकें।
रसूलुल्लाह और उनके कत्ल के बीच सिर्फ मकड़ी जाले के चंद तार ही थे, लेकिन आप वो रजले अजीम थे जिन्हें कत्ल नहीं किया जा सकता था। उरीकत उन्हें और उनके साथी हजरत अबू बकर को बेकरां और बेआबोग्याह सहरा से निकाल ले गया। मदीने वाले इस्तकबाल के लिए उनकी राह तक रहे थे, लेकिन लरजते दिलों के साथ। अल्लाह करे वो सलामती से पहुंच जाए।
कुछ देखा?
नहीं, कुछ नहीं।
उसने कहा था वो महज इंसान है, कोई इंसान इस गर्मी में नहीं बच सकता।
छुप जा, भाग जा, कहीं दिखावे के लिए तुझे आजाद न करना पड़े।
یہ شہر آپ کے قدموں کی برکت کو خوش آمدید کہتا ہے یا رسول اللہ.
یا رسول اللہ آپ میرے گھر رہے, مدینے کا سب سے شاندار گھر, آپ رہیں گے تو میری عزت بڑھے گی.
میرے ساتھ رہے میرے گھر میں.
سنو سنو سنو, رسول اللہ ایک ہی وقت میں کس کس کے مہمان بن سکتے ہیں؟
جہاں اللہ ان کی اونٹنی کو ٹھہرا دے گا وہی رسول اللہ اپنا گھر بنائیں گے.
منظور ہے, ہم قصبہ کو کھلا چھوڑ دیں گے, جہاں وہ بیٹھے گی وہی رسول اللہ کا قیام ہوگا.
بڑا چالاک ہے, بھلا اونٹنی کے انتخاب پر کون ناراض ہوگا؟
یہاں ہم سب رسول اللہ کا گھر بنائیں گے
اور ایک مسجد جہاں ہم سب اکٹھے ہوا کریں گے. اسلام کی پہلی مسجد بنے گی یہاں.
یہ رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اینٹیں اٹھا رہے ہیں؟ لائیں دیکھیں, آپ بہت کر رہے ہیں, جائیں آرام کریں, ہم کر لیں گے. لو وہ اور لینے چلے گئے.
کام ایک عبادت ہے یا ان کا فرمان؟
ان کی عمر 53 سال ہے.
آپ کی کیا عمر ہے؟
कुछ कमी है शायद, घंटी लोगों को बुलाने के लिए।
घंटी तो ईसाई इस्तेमाल करते हैं।
नकूस कैसा रहेगा, यहूदियों की तरह?
तबल,
तबल से खून की बू आती है।
इंसानी आवाज क्यों नहीं? उमर बिन खताब इसकी पेशगोई कर चुके हैं।
अगर रसूल इजाजत दे। इशारा तुम्हारी तरफ है बिलाल।
मैं?
हाँ, तुम्हारी आवाज अच्छी है, जाओ ऊपर जाओ।
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
मेरे भाइयों, आज के दिन मदीने का हर आदमी मक्का के हर आदमी को सीने से लगाएगा। सब बराबर के हिस्सेदार हैं। आगे बढ़ो, बराबर वाले को गले लगा लो, सब भाई भाई।
मैं गुलामों को चूमने वाली सियासत से तंग आ गया हूं। इसे पढ़ो, पैगंबर को सिर्फ आखिरत से ताल्लुक रखना चाहिए।
मेरा बेटा कैसा है?
नमाज पढ़ रहा है घोड़े की तरह। हाथ जला दिया क्या?
इसे फाड़ डालो वरना घर ही जला देगा।
बादशाह की तरह कानून बना रहा है। उसने ऐलान कर दिया है कि इस्लाम से वफादारी खानदान और कबीले की वफादारी से बढ़कर है।
क्या तमाम मुसलमान एक ही खानदान के फर्द हैं? इससे धोखा न खाओ, क्योंकि इससे पहले उसे कबायली फितरत को तब्दील करना पड़ेगा। खतरा यहां है, बराबरी। पड़ोसी भी हर लिहाज से बराबर है।
ये दीवानगी है।
यहूदियों और ईसाइयों के हकूक मुसलमानों के बराबर। जो यहूदी इस मिसाक से वाबस्ता होंगे उनकी हिफाजत की जाएगी।
विरासत में औरतों के हुकूक भी।
हुकूक? अब तो वो ऊंटों को भी हुकूक देगा।
वो दे चुका है, तुम उन पर ज्यादा बोझ नहीं डाल सकते। वो मदीने की तामीर नौ कर रहा है, मेरे मदीने की।